Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavan ne phir vibhuti yog ka pratipadan kiya. Bhagavan ne kaha ki main Himalay mein, parvaton mein Himalay hoon, nadiyon mein गंगा जी हूं, मनुष्यों में राजा हूं, बहुत सारी चीजें बता दी। समझ में आया? नहीं आया। और दसवें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैं भगवान हूं, ये तो परोक्ष ज्ञान है। आप कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, ये तो परोक्ष ज्ञान है, ये मेरा अनुभव नहीं। आप जो कह रहे हैं ये मेरा अनुभव नहीं है, ये तो परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान का क्या आपका अनुभव होगा, मेरा अनुभव नहीं? और जो मेरा अनुभव नहीं है वो मेरे लिए क्या मतलब है उसका? आपने खाया, आपने स्वाद चखा, वो तो आपका अनुभव है। आप कितना भी मान लो आप बोलते जाए तो मेरे लिए क्या, उसका क्या प्रयोजन है? ज्यादा से ज्यादा वो मेरी भूख बढ़ा देगा, मेरा पेट तो नहीं भरेगा और मुझे स्वाद भी नहीं आएगा। आप कितना भी आप प्रशंसा करो, आपने खाया उस स्वाद का, आनंद का, आप जितना भी विस्तार करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए क्या फायदा है उसका? सुनने को अच्छा लगेगा और उल्टा भूख जगेगी, मेरे अंदर भी इच्छा होगी कि मुझे भी उसको खाना चाहिए। अर्जुन ने कहा तो परोक्ष ज्ञान है, और भूख जगी अर्जुन के मन में, भूख जगी और उसी का परिणाम था। अर्जुन ने कहा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, आपके उस रूप के मैं दर्शन करना चाहता हूं, मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूं, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। और उसके बाद भगवान ने दिखा दिया। ये जो 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन है, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने सुना नहीं, ध्यान देना। आज भगवान बोल नहीं रहे हैं, ये जो आपका 11वां अध्याय है ना, ये बोलने का अध्याय नहीं है, ये दिखाने का अध्याय है। ये केवल श्रवण का अध्याय नहीं है, ये दर्शन का अध्याय है। आपका जो 11वां अध्याय है, भगवान ने बोला नहीं है, वो जितना भी वर्णन है वो वर्णन बोलने का वर्णन नहीं। इसलिए आप जहां प्रवचन बोलते हैं उसको हटा दीजिए। आप ये 11वां अध्याय प्रवचन नहीं है, 11वां अध्याय भगवान के वचन नहीं है, भगवान के दर्शन है। भगवान ने दिखा दिया, भगवान ने कहा देखो तुम मेरे इस रूप को, और भगवान ने दिव्य दृष्टि खोली। और वह दिव्य दृष्टि का अर्थ केवल आंख के अर्थ में नहीं है, भगवान ने दिखाया। भगवान ने दिखाया तो सुना कि नहीं? क्या वो मूक पिक्चर थी क्या? और मूक पिक्चर होगी तो आपको आनंद भी नहीं आएगा। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप पिक्चर देख रहे हैं बहुत अच्छी, और अचानक उसकी आवाज बंद हो जाए, आप परेशान हो जाओगे। वो मूक पिक्चर होगी, उसमें आनंद नहीं आएगा। भगवान ने दिखाया, आप ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, आप सोचते हैं भगवान ने दिखाया। दिखाया क्या? दिखाने के साथ सुनाया भी, चखाया भी, स्पर्श भी कराया। वहां नारायण छह इंद्रिय अर्जुन के काम कर रहे थे, यहां दिव्य दृष्टि का अर्थ केवल देखने अर्थ में नहीं है। भगवान ने दिखाया और वो विश्व रूप जब प्रकट हुआ, और वहां शब्द जब काल बनकर ऐसा अर्जुन देख रहा था, सारी दुनिया भगवान में प्रवेश कर रही, भगवान दांतों से चबा रहे हैं सब इन दुष्टों को, चबा रहे हैं। शब्द हो रहा होगा कि नहीं? और यदि शब्द न हो भयंकर तो क्या उसमें भयंकरता क्या है? इसे नारायण वहां देखा भी, सुना भी, और आग जब जलती हुई मालूम पड़ती थी तो उसका थोड़ी गर्मी उष्णता भी तो अनुभव हो रही होगी। अपरोक्ष ज्ञान आज भगवान को देखा, अर्जुन ने देखा भगवान की भगवत्ता के दर्शन किए। और उसके बाद फिर अर्जुन ने बोला, पश्चाताप होने लगा, सखीति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मत मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अब ज्ञान हुआ, ग्यारहवें अध्याय में जाने के बाद अर्जुन को ज्ञान हुआ कि आप केवल गुरु नहीं है, आप केवल मेरे मित्र नहीं है, सखा नहीं, आप तो साक्षात भगवान हैं। अंतर्यात्रा, भगवान की अंतर्यात्रा आज दर्शन हुए, भगवान के दर्शन में, विश्व रूप के दर्शन में, माने भगवान के दर्शन में, कण कण में विश्व ही जिसका रूप है, विश्व ही जिसका स्वरूप है, जो कण कण में ईशावास्य मिदम सर्वम। देखा अर्जुन ने, देखा, अनुभव किया, छुआ परमात्मा को, धन्य हुआ। लेकिन इसका मूल कहां है? इस अंतर यात्रा का, भगवत दर्शन की यात्रा का मूल कहां है? विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इसका मूल अर्जुन के विषाद में है। यदि अर्जुन को विषाद न हुआ होता तो अर्जुन कभी भी परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित नहीं हुआ होता। उसके मन में कभी परमात्मा को जानने की जिज्ञासा ही नहीं हुई होती। इसलिए अर्जुन का विषाद भी योग बना, अर्जुन का दुख भी अर्जुन के जीवन का योग बना। इसलिए कई बार साधक के जीवन में ऐसा होता है, दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते दुख, दुख भी ये परमात्मा के प्राप्ति का द्वार बन जाता है, वैराग्य बीच में आ जाता है। दोष दर्शन मालूम पड़ा, दुनिया के स्वभाव का पता चला। हम जिसको ऐसा कहते थे, ऐसा समझते थे, ऐसा नहीं मालूम पड़ा, और उसके बाद वैराग्य का प्रारंभ हो गया। कई बार आपको ऐसा होता है कि नहीं छोड़ो इसको, इसके लिए कितना हमने त्याग किया, कितना साधना में प्रतिबंध आया, आज देखने के बाद वैराग्य हो गया, सुनने के बाद वैराग्य हो गया। कितने बार वैराग्य होता है, और ये व्यर्थ नहीं है, आप इसको व्यर्थ मत समझ लीजिए। आपको एक क्षण भी वैराग्य हो जाए वो भी सार्थक है। वैराग्य का प्रारंभ होती ही हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। आप कभी ध्यान दिए हो, एक क्षण भी वैराग्य आ जाए तो आपको वैराग्य वहां टिकाता नहीं है, आप चल देते हैं, उस दिशा में चल देते हैं, आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती, आप सोचने लगते अब इसमें क्या रखा है, छोड़ो, चलो हम भगवान का भजन करेंगे। विवेक जागृत होने लगा, वैराग्य विवेक को जगाता है, वैराग्य विवेक को जगाता है, और विवेक भी वैराग्य को जगाता है। वैराग्य होता कहां है? इसलिए यहां अर्जुन के जीवन में दुख आया, विषाद आया, और उसी विषाद का परिणाम था, दुख का परिणाम था, उसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा निर्मित हुई, विवेक जगा। ये आपके प्रथम अध्याय के आप प्रकरणों को आप देखना, एक एक श्लोकों को देखना, अर्जुन के जीवन में कितना परिवर्तन आया उसी विषाद के कारण। इसलिए नारायण, दुख का बोध हो जाए, अज्ञान का पता चले, और वहीं से हमारी अंतर यात्रा, हमारी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए अज्ञान का बोध होना बहुत आवश्यक है, अज्ञान का पता चलना बहुत आवश्यक है। अज्ञान का पता चलते ही हम उस अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। बड़ी मजेदार बात, अज्ञान में होना अलग बात है और अज्ञान का पता होना अलग बात है। हमें सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अज्ञान का पता नहीं होता है। हमें सब कुछ है, हमें सब कुछ है, लेकिन यही पता नहीं कि अज्ञान है। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? यह अज्ञान के पता होने की सूचना है। मालूम पड़ा, मालूम पड़ा भैया हम तो बड़े अज्ञानी हैं, मालूम पड़ा हम बड़े दुखी हैं, मालूम पड़ा हम बड़े कामी हैं, हम बड़े क्रोधी हैं। आप सुरदास जी के, आप तुलसीदास जी के, आप जितने बड़े से बड़े भक्त हैं उनके आप प्रारंभिक पद्यों को पढ़ना। एक बात मुझे बहुत आकर्षित करती, आप उनके प्रारंभिक पद्यों को पढ़ना, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है, हम बड़े दीन हैं, हीन हैं, अज्ञानी हैं, हम कामी, हम क्रोधी, और हे प्रभु आप हमको यहां से ऊपर उठा लो। बात क्या है? सुरदास जी महाराज जी में काम हमसे ज्यादा है, क्रोध हमसे ज्यादा है, लोभ हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा बिल्कुल नहीं है, उल्टा हम में ज्यादा है। लेकिन कभी हमको ऐसा लगता है क्या? कभी आपने भगवान से प्रार्थना की क्या? प्रभु हम बड़े कामी हैं, हम बड़े क्रोधी हैं, बड़े लोभी हैं। कभी भगवान से प्रार्थना की क्या? आपको पता चला कि हम ये हैं? पता नहीं चला। और उन्हें पता चला, बस बात इतनी है, उन्हें पता चला है और हम होते हुए भी हमें पता नहीं चला। ये प्रभु की कृपा है, ये आपका सत्संग का प्रभाव है, स्वविवेक का जागरण है और बड़ी महत्व की बात हमारे जीवन में, जिसमें हम होते हैं, जिसमें हम जीते हैं, वो धीरे धीरे उसका पता होना बंद हो जाता है। आपको एक उदाहरण बता देता हूं। जब मैं अभी आदिवासी एरिया में यात्रा करने के लिए गया, मैंने देखा उन आदिवासी माताओं के पैरों में दो दो किलो के अलंकार पड़े, दो दो किलो के। आपको पहना दे तो दो दो किलो के, गिरीश, दो दो किलो के, एक एक इधर इधर हाथों में, और वो दौड़ती हैं, पहाड़ों में चढ़ती हैं। लेकिन आपको पहना दे तो आप उठ नहीं पाएंगे, आपके लिए वो बेड़ियां बन जाए। लेकिन वो इतनी सारे वजन लेकर दौड़ते हैं, कारण क्या है? अभ्यास। वो अब धीरे धीरे उसको अब मालूम नहीं पड़ता है, पहले पहले मालूम पड़ता होगा, और अब उनके पैरों में वो अलंकार है लेकिन मालूम पड़ना बंद हो गया। जेल में आदमी जब जाता है तो जेल उसको जेल मालूम पड़ती है पहले पहले, और बाद में वो जेल मालूम होना बंद हो जाती है। आपको पहले दिन बहुत अखड़ेगी वो जेल। जब हम राम जन्मभूमि के समय बनारस में थे तो हम भी 18 दिन तक जेल में रहे। हम 7-8 महात्मा थे, हमारे स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जी का एक शिष्य था, वो भी हमारे साथ था, एक कल्याणगिरी नाम का साधु था हमारे साथ। जब पहले दिन गए, पागल हो गया वो, अरे बोले ये जेल मालूम पड़ी है। जैसे रात्रि के समय हम 10 बजे 11 बजे पहुंचे जेल में, और थक गए थे, दिन भर थक गए थे, सो गए। सुबह हुई, हाँ आंख खुली, देखा सब बंद, सब बंद। दरवाजा खोलने के लिए बोला, बोले नहीं तुम 7वें बैरक में हो। महात्मा ने हमको घूमने के लिए जाना, अरे बोले घूमने जेल में हो तुम, अरे जेल में हो तुम। अब वो महात्मा परेशान, अरे बोले क्यों आए हम, हमने कहा जेल में आए हो तुम, अब तुमको सहना, राम जी के लिए आए हो तुम, राम मंदिर के निर्माण के लिए आए हो सौ। बोले नहीं, अब वो बैठे बैठे दिन भर यही सोचता था, मैं कैसे बाहर निकलूं। उसने योजना बनाई, बोले पानी का टैंकर आता है और टैंकर में घुस करके मैं चला जाऊंगा। हमने कहा पानी के टैंकर में घुस गए और बाहर नहीं आ पाए तो, और ऊपर से पानी डाल दिया उन्होंने, भर दिया टैंकर। अरे बोले इससे तो अच्छा है यहीं रहो। एक एक दिन, और पहले दिन थोड़ा ज्यादा अटका खटका, और दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया, तीसरे दिन थोड़ा कम। और नारायण, जहां जेल में लोग रहते थे वो आराम से रहते थे, कैदी आराम से जिंदगी काट रहे थे, उनको मालूम पड़ना बंद हो गया, जेल जेल मालूम पड़ना बंद हो गया, क्योंकि अब आदत हो गई। आदत में आने के बाद वो मालूम होना बंद हो जाता है। हम क्रोध करते जाते हैं, और किसी ने आके बोला कि आप क्रोध करते हो, आप क्या बोलोगे, कहां करते हैं? आदमी दूसरे को गाली देता है और देते देते मालूम होना बंद हो जाता है कि हम गाली देते हैं। एक बार एक आदमी कोर्ट में खड़ा था, और उसके ऊपर आरोप था कि आदमी बहुत गाली देता है, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बहुत गालियां देता है। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारी शिकायत है कि तुम लोगों को बहुत गाली देते हो। उसने कहा, कौन साला कहता है कि मैं गाली देता हूं। न्यायाधीश ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम किसी को गाली नहीं देते हो। वो न्यायाधीश को ही कह रहा है कि कौन साला कहता है कि मैं दूसरे को गाली देता हूं। अब वो गाली उसको आदत में आ गई और इतनी आदत में आई कि अब आप उसको मालूम होना बंद हो गया है। आप कितना भी खराब से खराब गाली दे, लेकिन अब गाली गाली नहीं लगेगी। हम हजारों साल से, लाखों साल से, हम अपने जीवन के प्रारंभ से ही अज्ञानी हैं। हम प्रारंभ से ही कामी हैं, क्रोधी हैं, द्वेषी हैं। नारायण, हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं और उस विकारों में जीते जीते आ रहे हैं, और इसीलिए उसका मालूम होना बंद पड़ गया। इसलिए किसी आदमी को बोलना कि आप अज्ञानी हैं, वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका होना उसको पता नहीं है। लेकिन जब सत्संग करता है व्यक्ति, जब ज्ञानी के पास पहुंच जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि हम अज्ञानी। परम शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति के पास जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि हम तो बहुत दुखी हैं। आपके एकादशवें अध्याय स्कंद में बड़ा सुंदर प्रश्न आया है। निमि ने प्रश्न पूछा अवधूत दत्तात्रेय को। उन्होंने देखा अवधूत दत्तात्रेय की मस्ती, देखा आनंद, और महाराजा निमि को मालूम पड़ रहा था कि मैं राजा हूं, राजा होने में बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव है, बड़ा सुख है, सत्ता का, संपदा का, शक्ति का। लेकिन देखा अवधूत दत्तात्रेय को, ओहा, शरीर पर कुछ नहीं, शरीर पर कुछ भी नहीं है, और मस्ती देखी उन्होंने, आनंद देखा। और उनका जो प्रश्न है ना, पहला प्रश्न यही है, कुतो बुद्धि रियम ब्रह्मन अकर्तुः सुविशारदा। बोले आप अकर्ता हैं, और यहां अकर्ता का अर्थ आप बहुत बड़े अकर्ता के अकर्तृत्व बोध को आप मत लेना। उन्होंने कहा आप अकर्ता हैं, तो वहां ये कहना नहीं चाहते कि आप अकर्ता, अकर्तृत्व रूप जो आत्मसत्ता उसके बोध से संपन्न है, ये नहीं कहना है। उनको कहना है कि आप तो कुछ भी नहीं करते, आप अकर्ता माने आप कुछ नहीं करते, आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं, आप न व्यापार करते हैं, न युद्ध करते हैं, आप धन संपदा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, आपके पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इतने मस्त हैं, खबर शुरू हो गई, मालूम होने लगा। आज महाराजा निमि को पता चलना शुरू हो गया कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये मस्ती नहीं है, ये आनंद नहीं है। उन्होंने कहा कि बुद्धि आपको कहां से मिली, ये आनंद, ये मस्ती आपको कहां से मिली? ये कब मालूम पड़ा? जब अवधूत दत्तात्रेय मिले। दत्तात्रेय के आने के पहले वो अपने को आनंदपूर्ण समझ रहे थे, लेकिन अवधूत दत्तात्रेय के दर्शन होने के बाद मालूम पड़ा, मैं जिसको मस्ती कह रहा हूं, मैं जिसको आनंद समझ रहा हूं, वो आनंद नहीं है, वो मस्ती नहीं है। ये जिज्ञासा शुरू हो गई, वहां जिज्ञासा शुरू हो गई, उस आनंद को देखा और वास्तविक आनंद की खोज, आनंद का प्रश्न शुरू हो गया, उठ गया, जिज्ञासा उठी। इसलिए दो ही चीजें हैं, सत्संग करें, ज्ञानी के पास जाएं और सुने, और सुनते सुनते हमारे मन में अज्ञान का पता चले। परम पूज्य महाराज श्री के पास एक सेठ जी ने आके प्रश्न किया, महाराज जब हम अपने घर में होते तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं जब आप आते हैं और आपके सत्संग जब हम श्रवण करते हैं तो हमें मालूम पड़ने लगता है कि संसार दुख रूप है, इसमें बड़ी परेशानी है। आपके प्रवचन सुनने के बाद हमको मालूम पड़ता है, आप समझ रहे हैं। और बोले आप जब चले जाते तो हम फिर भूल जाते हैं और हमको फिर यही संसार बड़ा आनंदपूर्ण मालूम पड़ता है, बड़ा आनंद आता है। यही है, जब ज्ञानी के पास साधक जाता है, जब सत्संग करता है तो वहां पर उसको अपने कद का पता चल जाता है और उसका कद वही है, अज्ञान है। अज्ञानी का कद वही है, अज्ञान ही उसका कद है, दुख, अशांति, द्वेष, और वहीं से उसकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। वो प्रश्न पूछता है, श्रद्धावान होकर प्रश्न पूछता है, अब वो स्वयं खोजने में समर्थ नहीं है, इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। इसलिए मनो और शत्रुपा, ये हमारे जीवन का जीव भाव, वास्तविक जिज्ञासा का भाव है। और आप जब प्रश्न पूछेंगे तो अभिव्यक्ति होगी, आपको अब ज्ञानी गुरु अपना अनुभव बता देगा, और अपना अनुभव जब बताएगा तो शब्द होगा, वहां शब्द होगा। लेकिन जब अनुभव शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाए तो आपको मिलता क्या है? आपको अनुभव मिलता है कि अनुभव की खबर मिलती है, सूचना मिलती है? आप शब्द के द्वारा श्रवण करना चाह रहे हैं, आप शब्द के द्वारा श्रवण कर रहे हैं या आप कह रहे हैं, तो उस अनुभूति की आपको केवल सूचना मिलती है, सूचना। आपको अनुभव नहीं मिलता है, आपके सामने केवल सूचना मिलती कि वो चीज है। इसलिए श्रुति कहती है श्रवणयापि बहुवीर ह्यो न लभ्य, आप सुनते हैं और उस परमात्मा के बारे में कहते भी हैं, लेकिन क्या श्रवण से वो मिलता है? क्या श्रवण से उसको सचमुच कहा जाता है? आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो कि हमने बहुत अच्छा भोजन किया है, बहुत अच्छा, तो आप क्या सचमुच वो सूचना वहां तक दे पाते हैं? क्या वो स्वाद आप निर्मित कर सकते हैं? आपने रसगुल्ले खाए और आपने उसके ऊपर बहुत सारी कविताएं कर, बहुत बहुत प्रभावशाली ढंग से आपने उस बात को कहा, क्या कहने के बाद थोड़ा स्वाद मिला? थोड़ा थोड़ा तो मुख मीठा हुआ होगा, नहीं हुआ? थोड़ा तो आपने कितना भी क्यों न सुना, 56 प्रकार के व्यंजन सुने और बहुत काव्यात्मक, बहुत ढंग से, लेकिन मैंने कहा ना, आपने सुना, केवल आपके अंदर भूख जगी, आपके अंदर केवल भूख जगी है, भूख जगी है। आपने सुना, आपको मालूम पड़ा कि वो भोजन है, और सामने वाला कह रहा है बिल्कुल बात सही है, हमको चाहिए। इसलिए आपका शास्त्र कहता है आप बहुत श्रवण करने के बाद भी वो मिलता नहीं है। श्रृणवंतोपि बहवोपि यम न विदुहुस, बहुत सारा सुनने के बाद भी उन्होंने जाना नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भैया श्रवण तक सीमित मत रहो, आपको सुनने का निषेध नहीं है, ये आपको ये मंत्र श्रवण के निषेध का प्रतिपादन नहीं कर रहा है। आप श्रवण में सीमित मत रहो, श्रवण आपके जीवन का मनन बन जाए। आपने सुना किसी के बारे में, आप शब्दों को पकड़ते कि अर्थों को पकड़ते हैं? जैसे आपने सुना तीसरे माले पर सत्संग हो रहा है, तो आपने किसको पकड़ा? सत्संग को पकड़ा कि शब्दों को पकड़ा? आपने सुना तो था यही, तीसरे माले पर सत्संग हो रहा है, तो आपने शब्दों को पकड़ा होगा, तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं और तीसरे माले पर सत्संग हो रहा है, तीसरे माले पर सत्संग हो रहा है, तीसरे माले पर सत्संग हो रहा है, क्योंकि सामने वाले उपदेश यही किया है, तीसरे माले पर सत्संग हो रहा है। आपने किसको पकड़ा? शब्द को पकड़ा, और आपने अर्थ को पकड़ा, तो आप चल पड़े और सत्संग में आके बैठ गए। आपने किसको पकड़ा? अर्थ को पकड़ा। हम शब्द को पकड़ते हैं, हम केवल उसको दोहराने लगते हैं, लेकिन नहीं, श्रुति कहती आत्मा वाले श्रोतव्य सुनो, और सुनने के बाद उसका मनन करो, वो बात कान की बात मन तक पहुंच जाए, इसी का नाम मनन है। जो कान की बात है, जो सुना, वो कहां पहुंचे? हमारे मन में पहुंच जाए, लेकिन हमारा सुना हुआ कान का कान में रह जाता है, वो मन में कहां पहुंचता है, वो हमारा ज्ञान कहां बनता है, हमारी स्मृति कहां बनती है। मन में पहुंचने का अर्थ है वो हमारी स्मृति बनी, अटल स्मृति बनी, और वो स्मृति हमें बार बार याद आए। आपको याद आया, साढ़े सात बजे कार्यक्रम है, ये स्मृति आपने सुना और वो स्मृति बनी और आपको याद आया, समय पर याद आया, सवा सात बजे याद आया, चल पड़े, ये आपका मनन मन तक पहुंचा, स्मृति बनी, और उसके बाद फिर निश्चय, वो केवल मन तक न रहे, वो आपका निदिध्यासन बने। निदिध्यासन का अर्थ है बुद्धि बनी, बुद्धि माने निश्चयात्मकता। अब आपने समझ लिया है, अब वो केवल मन की भी बात अस्थिर है, चंचल है मन, मन का क्या भरोसा, इसलिए मन से सोचना विचारना है, उसको स्थिर करने के लिए निष्कर्ष निकालने का काम मन करता है, और जब निष्कर्ष बन जाता है तो वही मन बुद्धि बन जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को केवल श्रवण तक सीमित नहीं रखना है, उस ज्ञान को अनुभूति तक पहुंचाना है। इसलिए श्रुति कहती है, श्रवणयापि बहुवीर्यो न लभ्यः श्रुण्वन्तोऽपि बहवो यम न विदुः। और आश्चर्य वक्ता, उस तत्व को कहने वाला भी आश्चर्य, क्योंकि जो चीज शब्दातीत है, जो चीज अनुभूति का विषय है, जहां गुणक क्रिया नहीं जाती नहीं, ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा की अनुभूति को शब्द में कहना बहुत आश्चर्य है। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, इसको जो प्राप्त करता है वो भी कुशल और वो भी आश्चर्य में। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुविष्टा, मंत्र कहता है कि इसको जानने वाला भी आश्चर्य है, और गुरु के पास जाकर शिष्टतापूर्वक अध्ययन कर उसका अनुभव करने वाला भी आश्चर्य है। तो यहां दुर्लभता बता दी कि ज्ञान को पाना, उसको समझना, उसको अनुभव में उतारना, ये सारी चीजें बहुत आश्चर्य हैं, आश्चर्य है, और यही इसकी दुर्लभता, इसका महात्म्य है। आज प्रवचन को यही विराम, आप अगले श्लोक में और भी बहुत सारी चीजें श्रवण करेंगे। अभी
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।